السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، آج ایک اور پروگرام کے ساتھ رمضان کی یہ گھڑیاں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، رحمتوں کے، برکتوں کے، عطا کے، عزتوں کے، خیر کے، اب یہ ہماری اپنی جھولی پر ہے کہ ہم کتنی بڑی جھولی لے کر اس کے سامنے جاتے ہیں، کتنی بڑی جھولی اس کے آگے کرتے ہیں اور کتنی رحمتیں سمیٹتے ہیں. وہ تو دینے کو تیار ہے اور دینا چاہتا ہے، جبھی تو اس نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ جو ہماری اجر کو بڑھانے، ہماری بخشش کا سبب بننے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بننے میں معاون ہے. عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھ لے، آدھی رات کی عبادت کا اجر ہے. فجر بھی جماعت سے پڑھ لے اور آدھی رات کے اجر، عشاء اور فجر جس نے دونوں پڑھ لی، پوری رات کے نماز کا اجر ہو گیا اس کے لیے. جس نے قیام کر لیا، ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے. جس نے روزہ رکھ لیا، ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے. یعنی آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو ہر ہر عمل آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے. اب اگر ہم لینے میں سیریس نہیں یا ہمارا اتنا شوق نہیں ہے، تو ہم تو محروم رہ جائیں گے. سوچیں اگر کوئی آدمی یہ اعلان کر دے کہ اس نے ایک لنگر کھولا ہے اور جو جتنا بڑا بھی برتن لے کر آ جائے گا اس کو بھر کے دے گا، لیکن کوئی اس کے باوجود ایک چھوٹا سا کپ لے کے چلا جاتا ہے، تو وہ کیا پائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ اس کے تو خزانے بیش بہا ہیں. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ہم چھوٹا سا برتن لے کر نہ چلے جائیں، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں. اس نے دینا ہی ہے، تبھی تو ہمیں اتنی ساری باتیں بتا دی اس رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، آج کل جو راتیں ہیں ان کے حوالے سے. تو لینے والے بنیے، اپنا برتن بڑا کر لیجئے. جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا ہی بھر کے ملے گا. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس کو حاصل ہوتی ہے. ہم سب کی یہ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے. تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی وہ کون سی خاص باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. ایسا نسخہ وہ کیا ہے جس سے اس رب کے ہم محبوب بن سکیں. ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک نوجوان کو دیکھا. بہت سے لوگ اس کے گرد جمع تھے. اس نوجوان کی بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی. کہتے ہیں میں نے قریب جانے کی کوشش کی، مگر ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ میں جا نہیں سکا. اگلے دن میں مسجد جلدی گیا اور اس نوجوان کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل ہیں. یہاں پہ رک کے سوچئے کہ ایک وہ زمانے بھی ہوا کرتے تھے کہ کسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف لاتے تھے تو لوگ امڑ آتے تھے. جیسے آج ہم سوچیں امام کعبہ ہمارے شہر میں آ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، और कहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी लोगों में मौजूद हो, तो लोग तो उन आंखों को देखना चाहते थे जिन आंखों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता था। और ये भी सोचिए कि अगर हमें ऐसा वक्त मिल जाता जिन जिसमें हम सहाबी रसूल को देख सकते, तो हम क्या करते, क्या कहते? शायद हम सब यही कह रहे होते, हमारे लिए बस दुआ कर दीजिएगा। लेकिन वो लोग मुख्तलिफ थे, तो कहते हैं मैंने इंतजार किया उनकी नमाज खत्म होने का, और फिर उनके पास गया और उनसे कहा, मुझे अल्लाह की खातिर आपसे मोहब्बत है। उन्होंने मुझे कपड़े से पकड़ा और अपनी तरफ खींच के फरमाया, अल्लाह की कसम, क्या तुम वाकई अल्लाह की खातिर मुझसे मोहब्बत करते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने 3 बार ये बात पूछी और मैंने यही जवाब दिया। फरमाने लगे, वल्लाही मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई उन लोगों के लिए। और फिर उन्होंने कुछ सिफात बताई, वो सिफात हमें जानने की जरूरत है ताकि हम वो अपने अंदर पैदा कर सकें। यकीनन आपके जहन में ऐसी कुछ बातें आ रही होंगी कि पता नहीं वो क्या करते होंगे, नमाजें बहुत पढ़ते होंगे या रोजे बहुत रखते होंगे। लेकिन आज एक मुख्तलिफ बात है, और वो ये पहली सिफत उनकी ये बताई कि ये वो लोग जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, पहली सिफत, यानी 4 सिफात बताई, उनमें पहली सिफत ये है अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना। अब कहने को तो हम सभी बोल देते हैं कि मुझे अल्लाह की खातिर आपसे मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह की खातिर मोहब्बत होने की 2 निशानियां आज आपको बताती हूँ। एक ये कि आप दूसरे के लिए वही चाहेंगे जो अपने लिए चाहते हैं। यानी मसलन मेरा बच्चा हिफ्ज कर रहा है तो उसका भी कर ले, मेरी बच्ची की अच्छी जगह शादी हुई है तो इसकी बच्ची की भी हो जाए, मेरी जॉब अच्छी है तो इसको भी अच्छी जॉब मिल जाए, मैं अपने घर में खुशबाश हूं तो ये भी खुश रहे। ये होती है अल्लाह की खातिर मोहब्बत। और आप देखें जहां पर दुनिया की खातिर मोहब्बत होती है वहां पे इन चीजों में जेलसी होती है, हसद। अल्लाह की खातिर मोहब्बत में ये चीजें नहीं होती कि किसी को कोई नेमत मिल जाए और इंसान जल कुड़ जाए, तो ये इसका मतलब अल्लाह की खातिर मोहब्बत नहीं है। अल्लाह की खातिर मोहब्बत में ये होता है कि इंसान दूसरे के लिए वो ही पसंद करता है जो अपने लिए करता है, इसको भी सब वैसे ही अच्छा मिले जैसे मुझे अपने लिए अच्छा चाहिए होता है। दूसरी इसकी निशानी ये होती है कि गायबाना तौर पे इंसान दूसरे के लिए दुआ करता है। यानी ये नहीं कि उसको बता बता के जी मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, नहीं, आप उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके ऊपर एहसान के तौर पे नहीं, उससे मोहब्बत की खातिर। जो मोहब्बत है ये आपसे दुआएं करवाती है, तो वो मौजूद नहीं है, वो देख नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है, लेकिन आप उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये है अल्लाह की खातिर मोहब्बत। तो पहली निशानी उन लोगों की जिनसे अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई इन लोगों के लिए, ये वो हैं जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। दूसरी निशानी इनकी ये है कि वो अल्लाह की खातिर एक दूसरे की जियारत करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं अल्लाह की खातिर। जियारत करना क्या होता है? यानी किसी के पास मिलने के लिए जाना। अब इंसान का अपना काम हो ना तो वो भाग भाग के जाता है, किसी से आपने कुछ चाहिए है, आपको कुछ जरूरत है, आपकी कोई लालच है, कोई पर्सनल काम है, तो कोई मुश्किल नहीं होती जाने में। लेकिन जहां पर अल्लाह की खातिर किसी की ज्यारत करनी हो तो इंसान कहता है मेरे पास टाइम कहाँ है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल होने वालों के बारे में ना बताऊं, और जिनके बारे में बताया उनमें एक वो भी है जो अपने भाई की जियारत सिर्फ अल्लाह की खातिर करता, ना खाने पीने के लिए, ना एंटरटेनमेंट के लिए, ना वैसे ही दोस्तियां, अल्लाह की खातिर। तीसरी सिफत, एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, यानी मजलिस उनकी अल्लाह की खातिर होती है, इनके लिए भी अल्लाह की मोहब्बत वाजिब है। यानी आप देखिए ना, कई मीटिंग्स बिजनेस की खातिर होती हैं, कई सियासत के लिए होती हैं, कई खाने पीने की होती हैं, कई किसी मसले को डिस्कस करने की होती हैं, लेकिन एक मजलिस वो भी होती है जो सिर्फ अल्लाह की खातिर होती है। जैसे जहाँ पे आप दीन सीखते हैं, जहाँ पे आप हदीस जानते हैं, जहाँ पे आप कुरान का कोई इल्म ले रहे हैं, तो वहां पे इकट्ठे होने का मकसद क्या होता है? अल्लाह की बात करना। जैसे अभी हमारी ये मजलिस है, ये खालिसतन अल्लाह की खातिर है, इसमें और कोई मकसद नहीं है, हम मिलके बैठे हैं ना तो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की बात सुनने के लिए। तो ऐसा कोई दर्स, ऐसी कोई मजलिस, ये अल्लाह की खातिर मजलिस है। अपनी कंपनी में देखें कि जो नेक लोग हैं क्या उनके साथ भी मेरी मजलिस होती है जहाँ पे अल्लाह का जिक्र हो। ठीक है, वो वाली मजलिसें तो होती हैं जहाँ पे ड्रामों की बातें, कपड़ों की बातें, जेवरात की बातें, बिजनेस की बातें, सियासत की बातें, ये चीज़ें, इन पे मबनी तो मजलिसें बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन अल्लाह की खातिर कोई मजलिस हो, क्या ऐसी मजलिसें मेरी मजलिसें हैं? और चौथी चीज जो आखिरी बात है वो ये है कि जो खर्च करते हैं एक दूसरे पर अल्लाह की खातिर, यानी कोई और किसी से लालच नहीं, किसी से बदला नहीं चाहिए, बस अल्लाह की खातिर खर्च करना। आप देखते हैं किसी जगह पर फ्लड आया हुआ है, किसी जगह पर भूख है, किसी जगह पे लोग मुसीबत में हैं, उनको जरूरत है, उन पर बेदरे खर्च कीजिए। और आजकल तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, आपको दुनिया जहान की खबरें घर बैठे मिल जाती हैं, आपको पता है कि कहाँ पर लोग भूख की वजह से, किन हालात में, किन मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि चंदा इकट्ठा करने के लिए मस्जिद में ऐलान किया जाए, कोई ऐसे चैरिटी डिनर्स किए जाएं जहां पे हमारी वाहवाह हो तब हम देंगे, किसी को मांगने की जरूरत ही ना पड़े और हम दे दें। हम जानते हैं दुनिया में कहां कहां पर ऐसे बच्चे हैं कि जब उनकी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं तो ऐसे लगता है कोई ढांचा पड़ा हुआ है, लेकिन हम अपनी इफ्तार में चार पांच खानों से कम पर इक्तफा नहीं करते, जबकि हमारे बहन भाई, उनके पास इफ्तार करने के लिए भी कुछ नहीं होता। आज देख लें यमन के हालात, अफगानिस्तान के, सीरिया के, पाकिस्तान में कैसे भूख में हैं लोग। तो लिहाजा किसी का इंतजार नहीं करना, खर्च करना है। तो क्या वो चार सिफात हैं जो हम अपने अंदर पैदा करके अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने लिए वाजिब कर सकते हैं? दूसरों से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना, कोई भी लालच ना, एक दूसरे की जियारत अल्लाह की खातिर करना, तो कभी कभी किसी के घर का चक्कर इसलिए भी लगा लिया कर, टाइम पास के लिए नहीं सिर्फ, गपशप के लिए नहीं सिर्फ, अल्लाह की खातिर। और आप जानते हैं ना, जब किसी बीमार की जियारत करने के लिए आप जाते हैं, सुबह में जाएंगे तो सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, शाम को जाते हैं तो शाम से सुबह तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, ये भी एक जियारत होती है ना, बीमार की जियारत करना। तीसरी चीज जो अल्लाह की खातिर मिलके बैठते हैं, और चौथी चीज़ अल्लाह की खातिर जो खर्च करते हैं। तो लिहाजा अपनी मजलिसों को देखें, आप देखें कहाँ शौक से आप विजिट करते हैं, कहाँ पर आप खर्च करते हैं ज़्यादा। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाते जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये कुरान का महीना है, उम्मीद है कि आप कुरान पाक के ऊपर बहुत जोर दे रहे होंगे, आपका उठना बैठना सोना जागना कुरान के साथ हो रहा होगा। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं जिक्र करता, जिंदा और मुर्दा की तरह है। तो हम जिंदा तभी हैं जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, और अल्लाह का जिक्र बेहतरीन जिक्र कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा उबई बिन काब के पास तशरीफ ले गए और फरमाया, उबई, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। उबई कहते हैं, अल्लाह ने मेरा नाम लिया। अब उबई वो सहाबी नहीं है खालिद बिन वलीद की तरह जो जंगों में कहीं कमांडर हो, ना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह के बहुत ज़्यादा मालदार हों और सदका करते हों, ना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह के या हदीस बहुत रिवायत करने वाले। उबई कुरान की वजह से पहचाने जाते थे, और कुरान के साथ ताल्लुक की वजह से अल्लाह ताला ने इनका नाम लिया। तो पूछते हैं, अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो उबई रोने लगे इस पे, अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया। सुभान अल्लाह, सोचिए अल्लाह ताला मेरा और आपका नाम ले, कितनी ही बड़ी बात है रब्बे कायनात। और अल्लाह ताला के कुछ वीआईपी लोग होते हैं जिनको अहलुल्लाह कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन्नास, अल्लाह ताला के कुछ लोग हैं जो उसके अहल हैं, यानी वीआईपीज हैं। अब देखिए दुनिया में वीआईपी बनने का हमें कितना शौक होता है, इसलिए कि वीआईपी को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बड़ा उसको इज्जत मंजिलत लोगों में दी जाती है, लोगों से ऊपर उसका मकाम रखा जाता है। तो हमें बहुत शौक होता है कि हम भी वीआईपी बन जाएंगे। और अल्लाह ताला के भी कुछ वीआईपीज हैं, वो कौन लोग हैं? सहाबा ने ये सवाल पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन है जो दुनिया में अल्लाह के वीआईपीज हों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहलुल कुरान, अहलुल कुरान अहलुल्लाह व खासहु, अहले कुरान जो हैं, कुरान वाले, वो अल्लाह के अहल हैं, वो वीआईपीज हैं अल्लाह के। अब देखिए किसी चीज़ के वाले होना कहलाना तभी होता है जब इंसान वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं ये सफाई वाली है, ये कपड़े सीने वाली है ना, आप वो क्यों? इसलिए क्योंकि वो यही काम करता है या करती है। अब वो बाप भी हैं, कोई शौहर भी हो सकता है, लेकिन वो दर्जी कहलाता है इसलिए क्योंकि वो हर वक्त कपड़े सीने का काम करता है। तो मैं कैसे पहचानी जाती हूँ? सवाल ये अपने बच्चों से पूछिएगा कि मैं हर वक्त क्या करती हूँ, वो सच बताएंगे। या तो वो कहेंगे, अम्मी आप तो हर वक्त फ़ोन पे ही लगी रहती हैं, या वो कहेंगे, आप हर वक्त किचन में ही होती हैं, या हो सकता है वो ये कहें कि आप हर वक्त ही कुरान पढ़ती रहती। दुनिया में ही आपको गवाहियां मिल जाएंगी कि आप वाकई अहलुल्लाह हैं, तो अहलुल्लाह बनने की कोशिश करें। इस महीने में तो कम से कम जो हमें देखे वो कुरान के साथ देखे, और ये कुरान, इसकी सादतें, इसकी बरकतें तो इतनी हैं कि जो भी इसमें चाहे परफेक्ट नहीं भी है मगर कोशिश कर रहा है ना, उसको भी दो अजर मिलते हैं, एक कोशिश करने का और एक कुरान पढ़ने का। और जो माहिर हैं वो तो इज्जतों वाले फरिश्तों के साथ होंगे कयामत के दिन। तो आप कभी भी इसमें अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको मुश्किल होती है, तो भी कभी इसे पीछे ना हटें। आपको बहुत टाइम लगता है एक पारा पढ़ने में, तब भी हिम्मत ना हारे, फलाने तो इतने कर लिए और मैं नहीं कर सकी, और मुझसे तो ख़त्म होगा ही नहीं, ये चीजें आपको पीछे ना करें, जितना भी आपसे हो सकता है अल्लाह ताला आपकी कोशिश देख रहा है। अगर आप मुशक्कत के साथ पढ़ रहे हैं, मुश्किल से पढ़ रहे हैं, आपको घंटा लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं एक पारा खत्म करने में, तो कोई मसला नहीं, आपको डबल भी तो अजर मिल रहा है। अल्लाह ताला बस हमें कुरान में मशगूल करते, इसमें हमारा दिल लगे। उस्मान रजी अल्लाह ताला नु फरमाते थे ना कि जो दिल पाक होते हैं वो कुरान से कभी नहीं भरते, कभी सैर नहीं होते। कहते मुझे ये बात नापसंद है कि कोई दिन मेरी जिंदगी का ऐसा गुजरे जिसमें मैं कुरान को ना देखूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, काश हमारे लिए भी ऐसा हो जाए कि कोई दिन जिंदगी का ना गुजरे कुरान के बगैर। आज का जिक्र बहुत आसान जिक्र है और आप सबको आता भी है, मगर शायद उसकी इतनी फजीलत आपको मालूम ना हो, और जब चीजों की फजीलत पता चलती है तो इंसान खुशी और शौक से उनको करता है। तो हदीस के साथ आपके सामने रखती हूँ ये जिक्र कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे तो एक बद्दू आया। सहाबा बड़े खुश होते थे जब कोई बद्दू आता था ना, क्योंकि वो सवाल करने में शर्माता नहीं था, सहाबा को थोड़ी झिझक होती थी, तो बद्दू आगे कोई भी सवाल कर लेते थे। तो कहने लगा आके कि मुझे कोई खैर की बात सिखा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया? उसका हाथ पकड़ के उसको ये सिखाया। हाथ पकड़ने से क्या होता है? एक अपनाइत होती है। नबी अलैहिस्सलाम की जात मुबारक कहाँ और कहाँ एक बद्दू, ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लोगों को महसूस कराते थे ना, कितनी अपनाइत महसूस करवाते थे। तो बद्दू ने ये सीख लिया और उठ के चल दिया। अभी कुछ दूर गया था कि फिर वापस पलट के आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आते हुए देखा तो मुस्कुरा दिए, फरमाया इसने कुछ गौर व फिक्र किया है उस पर जो मैंने उसको बताया है। बद्दू आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये कलिमा जो आपने मुझे सिखा दिए हैं ये तो अल्लाह के लिए है, अब इसमें मेरे लिए क्या है? मैंने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो अल्लाह ताला के लिए कलिमात हैं, तो मैं मुझे क्या मिलेगा इससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, जब तुम कहोगे सुभान अल्लाह तो अल्लाह ताला फरमाएगा सदकता, तूने सच कहा। जब तुम कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला फरमाएगा सदकता, तूने सच कहा। जब तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने सच कहा, और जब तुम कहोगे अल्लाह अकबर तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने सच कहा। सुभान अल्लाह यानी ये वो कलिमात है कि अल्लाह ताला जवाब देगा कि तूने सच कहा। फिर तुम कहो अल्लाहुम्मा गफिर ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कद फाल फाल तू, मैंने तुझे बख्श दिया, मैंने ये कर दिया जो तूने दुआ की। फिर तुम कहो अल्लाहुम्मरहमनी, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कद फाल तू, मैंने ये कर दिया, मैंने तेरे ऊपर रहम कर दिया। फिर तुम कहो अल्लाहुम्मरज़ुकनी, तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने ये कर दिया, डन हो गया। यानी तुम उसके बाद जो कुछ भी मांगोगे, चाहे बख्शिश मांगो, रहम मांगो, रिस्क मांगो, अल्लाह ताला उसी वक्त जवाब देगा कि मैंने ये कर दिया तेरे लिए। इतने महबूब है अल्लाह ताला को ये कलिमात, कि जब इंसान ये कहता है तो अल्लाह ताला को इतने प्यारे लगते हैं कि अल्लाह ताला इसका जवाब देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अता फरमाता है जो भी इंसान मांगता है, तो कितने अजीम कलिमात हैं ये। इसलिए आप जब ये जिक्र करें तो उसके बाद दुआ भी जरूर करिएगा, जो भी आप करना चाहें, लेकिन बख्शिश की दुआ तो ऐसी चीज है ना कि हम सब की जरूरत है। इसीलिए आज की दुआ भी वही है जो टॉप ऑफ आर दुआज होनी चाहिए, टॉप पे। सब बाकी दुआएं भी आप करें, अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं, लेकिन सबसे पहले बख्शिश की दुआ कीजिए, क्योंकि इस महीने में जिसकी बख्शिश नहीं हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हलाक हो गया जिसकी बख्शिश नहीं हुई। जी उसको रमजान का महीना मिला और फिर भी वो अपनी बख्शिश ना करवा सका, वो हलाक हो गया। और इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर जिब्राईल अलैहि सलाम ने आमीन फरमाया था। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है कि हाँ हो भी गई तो ठीक है, नहीं भी हो गई तो कोई मसला नहीं। नहीं, ये हमारी जरूरत है क्योंकि हलाकत है। कहने वाले कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। आमीन किसने कही? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हलाक हो गया वो आदमी जिसकी बख्शिश ना हुई, यानी इतनी रहमतों वाले महीने में वो अपनी बख्शिश ही ना करवा सका, तो फिर तो वो तबाह हो गया वो, अगर इस वक्त भी नहीं मिली उसको बख्शिश। तो इसलिए आप दुआएं जरूर कीजिए, लेकिन अपनी दुआ में सबसे पहली दुआ जो आपकी होनी चाहिए कि अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें माफ कर दे। और आज की जो दुआ है ये भी इतनी अजीम दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दी और फरमा दिया कि जो ये कह देगा अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, चाहे वो जंग से भागा हुआ क्यों ना हो। और ये दुआ आप सजदे में भी मांग सकते हैं, इसको याद कर लें, सजदों में मांगे। दुआ क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह, जैसे हम कहते भी रहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वैसे तो हर वक्त का अपना, जैसे रोजे में ना कॉन्स्टेंट आप इबादत में, तो उठते बैठते अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यानी जैसे एक बंदे का तकिया कलाम बन जाता है ना, उस तरह से ये हमारा बन जाए अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बस ऐसे कहते रहे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे भी इजाफा है, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अस्तग़फिरुल्लाह कि मैं बख्शिश मांगती हूँ अल्लाह से, वो जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो हई है हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला, अतूबु इलैही, मैं तौबा करती हूँ उसकी जनाब। ये बहुत अजीम दुआ है, इसलिए इस दुआ को जरूर अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिए। और वैसे भी जब आपको ये दुआ याद हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह सजदों में भी मांगेंगे और इफ्तार के वक्त भी मांगिए और उठते बैठते मांगिए। कौन सी कबूलियत की घड़ियों की हमारी ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का शर्फ हासिल कर ले तो हम हलाकत से बच जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे इस मुबारक महीने में। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني.